जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है तू जग के वास्ते हर दुख उठारे भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए तू जल जल के यहाँ किरने लुटारे लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना सदा हंसते हुए तपना अगन में किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में तू जल रे परवान कर प्राण की ये भी एक लीला है भगवान की सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं करोड़ों आंगनों में है अंधेरा अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला समझ ले है अधूरा काम तेरा जगत उद्धार में अभी देर है अभी तो दुनिया में अंधेर है सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते
बुद्ध का 27वां उत्तराधिकारी उसका नाम था हन्यतारा। जैसे बुद्ध तेजस्वी थे वैसे हन्यतारा भी अत्यंत तेजस्वी। दक्षिण भारत का कोई राजा था जिसने हन्यतारा के विषय में सुना था और उसकी ये उत्कट इच्छा थी कि हन्यतारा जो बुद्ध का ही प्रतिरूप है और इस समय है, वो हमारे राज्य में आए, हमारी राजधानी में आए, दरबार में आए और बुद्ध के कुछ सूत्र पढ़े। सूत्र पढ़ने वाले संसार में बहुत हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान पंडित ज्ञानी, परंतु बुद्ध जैसा ही कोई बुद्ध के सूत्र को समझाए, जो स्वयं सूत्र का स्वरूप है, ये कितनी बड़ी बात होगी। अन्यतारा अपने एक सेवक, अपने एक सेवाधारी के साथ राज्य में प्रवेश करते हैं। बहुत स्वागत सत्कार, राज्य को, महल को सजाया जाता है। राजसभा के बीच अन्यतारा बैठते हैं और उनका बाजू में सेवक जो उनका ध्यान रखने वाला है, और सभा चालू होती है। सभी उत्सुक हैं कि अन्यतारा बुद्ध स्वयं बुद्ध के सूत्र पढ़ेंगे, तो कैसी उसमें अद्भुत सी, कैसा अद्भुत आकर्षण होगा, कैसे गहरे राज आज खुलने वाले हैं। पर अन्यतारा बैठे रहते और आप उनका जो सेवक है उसको पढ़ने के लिए दे देते। वो सेवक जिसका उच्चारण भी ठीक नहीं है और व्याकरण में भी त्रुटि है, वो सूत्र पढ़ रहा है। राजा बन ही मनुदास, अगर पढ़वाना ही था तो इतने ज्ञानी मनीषी राज्य में पहले से ही थे, इनको नहीं बुलाया होता। परंतु सम्मानवश राजा चुप रहता है और वो सेवक सूत्र पढ़ते जाता है। सेवक है, सेवाधारी, उनके छोटे मोटे काम करने वाला, सूत्र पूरे हो जाते। राजा अन्यतारा के सामने जाता है और कहता है, मैं समझ नहीं पाया हूं ये क्या है, परंतु जानने की इच्छा है कि आपने स्वयं सूत्र नहीं पढ़े। अन्यतारा कहता है, क्या मैंने नहीं पढ़े? मैंने तो पढ़े। राजा कहता है, मेरी उलझन और ज्यादा बढ़ रही है, कृपया करुणा के सागर अनुकंपा करे, कैसे आपने पढ़े, आपने तो पढ़े ही नहीं। अन्यतारा कहता है, पढ़ ही तो रहा था, सूत्र केवल मुख से ही थोड़ी पढ़े जाते, मैं श्वास से पढ़ रहा था, श्वास भीतर श्वास बाहर, श्वास भीतर श्वास बाहर, संपूर्ण जागरण स्थिति में मैं बैठा था, बैठा हूं और ये सजगता, सूत्र पढ़ना ही तो है, ये भी तो एक पाठ ही है। क्या बोलना ही सूत्र पढ़ना है? समग्र जागरण क्या विधि नहीं है सूत्र पढ़ने की? और राजा देखता है कि वास्तव में अन्यतारा अभी भी वहां बैठा है और अभी भी श्वास ले रहा है, परंतु इसकी श्वास में एक लय है, एक अद्भुत सा समन्वय है, सुगंध है। राजा कहता है, मैं चूक गया, गलती हो गई, जब सूत्र पढ़े जा रहे तो मन में केवल एक ही था कि ये व्यक्ति क्यों पढ़ रहा है, इसे तो कुछ आता नहीं है, इसने पढ़ना ही नहीं चाहिए था, जिसके लिए बुलाया था वो, जिसको बुलाया था वो नहीं पढ़ रहा है, और मैं ये देखना ही भूल गया कि मौन भी एक व्याख्यान है। मौन से भी बोला जा सकता है। शेक्सपियर का एक पात्र कहता है, आई शैल स्पीक टू दी इन साइलेंस, मैं तुमसे बोलूंगा परंतु मौन में। आगे राजा कहता है कि मेरे तीन पुत्र हैं, आप अभी आए हो तो उनको भी आशीर्वाद दो, और मैंने जानबूझ के उन्हें बुलाया नहीं था सभा में, छोटे हैं, एक 7 साल का, एक 10 साल का, एक 15 साल का, क्या मैं उन्हें बुलाऊं? हन्यतारा कहता है बुलाओ। उससे पहले राजा उस 27वें बुद्ध के अधिकारी को एक अमूल्य हीरा देते हैं, कहते हैं कि ये आपको मेरी तरफ से भेंट। और हन्यतारा जब पहला बेटा है, उस पहले बेटे को वो हीरा दिखाते हैं, 15 साल का वो बेटा है, और कहते हैं कुछ कहो इसके बारे में। वो पहला बेटा 15 साल का कहता है, ऐसा अमूल्य हीरा, ये हीरा तो और कहीं मिल ही नहीं सकता, ये सबसे कीमती हीरा होगा। हन्यतारा कहता है सही कहा। दूसरे बेटे से पूछता है इसके विषय में कुछ कहो, वो कहता है ऐसा अमूल्य हीरा तो मेरे पिता के अतिरिक्त और किसी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके मेंटेनेंस के लिए भी कितनी बड़ी सेना की आवश्यकता है, जरूर आपको मेरे पिताजी ने भेंट किया होगा। हन्यतारा कहता है सही कहा। तीसरा बेटा 7 साल का है, उसको कहता है इसके विषय में कुछ कहो, इस हीरे के विषय में। 7 साल का वो बच्चा कहता है कौन सा हीरा, ये पत्थर हीरा कैसे हो सकता, हीरा बाहर हो ही कैसा कह सकता है, हीरा तो भीतर है। हन्यतारा उसे गले लग राजा से कहते हैं, राजा तुम सोच रहे हो तुमने मुझे बुलाया, मैं खुद आया हूं इसकी तलाश में, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में इसको वचन दिया था कि तुमको ढूंढने मैं खुद आऊंगा। और वो छोटा बच्चा होता है बोधि तारा, जिसका हन्यतारा नाम रखता है बोधि धर्म, और ये बुद्ध का 28वां उत्तराधिकारी होगा। मैं इसकी तलाश में आया हूं, प्रवचन देने नहीं आया हूं। और बोधि धर्म वो है जो भारत से पहला व्यक्ति है जो चीन में गया और सारे विश्व में जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जैन पूरी फिलॉसफी खड़ी कर, जापान सब जगह, चीन में पहली बार भारत से बुद्ध का संदेश लेकर कोई गया तो वो बोधि धर्म है। सच्चा हीरा कहाँ है? भीतर, बाहर तो कुछ है ही नहीं, संसार में है क्या? शरीर, पैसा, वस्तुएं, सामग्री, सुख साधन। तीव्र विवेक से जो देख ले कि इसमें सुख है ही नहीं, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है। सच्चाई तो भीतर है, सच्चा सुख तो यहां है, बाहर के किसी स्थान पर कहीं कुछ नहीं है, दूर के ढोल सुहावने हैं बस, जो कार्य करना है वो तो भीतर है। बाबा ने कहा तुम्हें हीरा बनना है, जिसमें 5 बातें बताई, सच्चा हीरा, चमकीला हीरा, चमकता हीरा, सच्चा हीरा, अमूल्य हीरा, नंबर 1 हीरा, और 5वां बेदाग हीरा। तुम्हें क्या बनना है? बेदाग हीरा, जिसमें एक भी दाग ना हो। तुम्हें कौन सा हीरा बनना है? नंबर 1 हीरा बनना है। तुम्हें कौन सा हीरा बनना है? अमूल्य हीरा बनना है। तुम्हें कौन सा हीरा बनना है? चमकता हुआ हीरा बनना है, सच्चा हीरा बनना है, झूठा नहीं। और अगर ऐसा सच्चा हीरा बनना है और ऐसा बेदाग हीरा बनना है तो उसमें दाग ना हो और उसमें धूल ना हो। और दाग और धूल कौन है? थिंकिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के विषय में सोचते रहना, दूसरों को देखना, पर दर्शन, पर श्रवण, पर स्पर्श, पर चिंतन, ये लंबी लिस्ट है इधर 30 की। परमत, परसंग, परदोष, पढ़ते जाओ। पराश्रित जीवन, पराश्रय, आश्रित मानसिकता, दूसरों के मेंटल स्लेव, इमोशनल स्लेवरी, भावनात्मक बंधन उत्पन्न हो गया आत्माओं के साथ और हम उनके दास बन गए। गुलाम वंश यहीं से चालू हुआ। पराश्रित, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, ये यात्रा तो अकेले की है, स्वतंत्र यात्रा है, इसमें दूसरे का क्या काम। साथ साथ ज्ञान करेंगे, योग करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, कहाँ हो तुम, वेयर आर यू, जल्दी आओ मैसेज, साथ में बैठ के योग करेंगे, जगह तुम्हारे लिए रिजर्व रखी है, जल्दी आओ। कभी कभी तो मधुबन में आते हैं, तुम उस सेंटर से, हम इस सेंटर से, साथ में बैठ के योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, पवित्र योग, पवित्र रिश्ता संबंध, पवित्र प्यार, साथ साथ भोजन करेंगे, साथ साथ मुरली सुनेंगे। अमृत वेला कहाँ हो, जल्दी आओ, सीट रखिए। जल्दी आओ नहीं तो दूसरा बैठेगा। द अदर इज हेल, पश्चिम का विचारक जीन पॉल सात्र कहता है, दूसरे से तुमको क्या काम, नरक है, तुम अपना देखो, अपने आप में डूबे रहो, तुम्हें अपने आप को ठीक करना है, दूसरों को नहीं। तो आज इन 30 में से कोई भी 5 उठाने हैं और उस पर कुछ लिखना है। 30 है इधर, परकोप, परपंच, पर चिंता, पर श्रम, पर भाव, पर अध्ययन, पर कृपा, दूसरों की कृपा में ही पलते रहते, जब चाहो जब देखो तब, फ्लैटरिंग बिजनेस, बटर फैक्ट्री, खुशामद, खुश करने में लगे हुए अपने सीनियर्स को, ताकि उनकी कोई कृपा हो जाए, विशेष कृपा, कोई पद मिल जाए, कोई इंक्रीमेंट हो जाए सैलरी में, प्रमोशन हो जाए, कोई इंडिपेंडेंट इंचार्ज का पोस्ट दे दे, कुछ तो करे, कोई गिफ्ट, उनको गिफ्ट देते रहो, कुछ तो करते रहो, महिमा ही करते रहो। राजा अपने दरबार में भाट रखते थे द्वापर से, उनका काम क्या था, यही, कुछ भी कहे राजा उसको हाँ में हाँ मिला, यस बॉस मेंटेलिटी। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक। रूल नंबर 2, इफ बॉस इज रॉन्ग, फॉलो रूल नंबर 1। यदि आपको लगता है बॉस गलत है तो रूल नंबर 1 को फॉलो करना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है। रूल नंबर 1 क्या है? बॉस इज ऑलवेज राइट। परंतु ऐसा पराश्रित परकृपा वाला हमारा जीवन ना हो। माइंड योर ओन बिजनेस, इंग्लिश में कहावत है, अपने काम से काम रखो। कई बार स्टोरी भी यहाँ सुनाई है जीसस क्राइस्ट की, वो पीटर पूछता है, ये जो पीछे जॉन है इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। पहले अपने बारे में पूछता है, लॉर्ड डू यू लव मी, क्या तुम्हारा मुझसे प्यार है। जीसस कहता है यस, फिर पूछता है लॉर्ड डू यू लव मी, यस आई डू लव यू, लॉर्ड डू यू लव मी, यस आई डू लव यू, What about the John? वो जो जॉन पीछे जो आ रहा है ना उसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है? इट्स बिटवीन हिम एंड मी, व्हाट इज दैट टू यू? वो मेरे और उसके बीच में तुमको क्या लेना देना है? तुम अपना काम से काम रखो. व्हाट इज दैट टू यू? तुम्हें क्या करना है उससे? बाबा क्या तुम्हारा मुझसे प्यार है? बाबा कहते हैं हाँ मेरा है, पर ये जो मेरा पड़ोसी है उसके विषय में क्या ख्याल है आपका? बाबा क्या कहेगा? That is none of your business. वो उसके और मेरे बीच का संबंध है, मामला मेरा और उसका है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ. तुमको क्या करना है? मैं उसका क्या करता हूं? तुम अपने काम से काम रखो. That's it. What is that to you? Mind your own business. The other is hell. परधर्मो भयावह. गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 35 क्या लिखा है गीता में? स्वधर्म, स्वधर्म, स्वधर्म में क्या है? श्रेय है. परधर्मो भयावह, दूसरों का जो धर्म है उसमें भय है. मछली का धर्म है तैरना, वो अगर सोचे मैं उड़ती क्यों नहीं तो कितना दुख हो जाएगा उसको. तुम्हारा धर्म उड़ना नहीं है, वो उसका काम है. चोर आया, कुत्ता सोया हुआ है, गधे ने देखा, कुत्ता सो रहा है जिसका काम है जागना चाहिए उसने ना. चोर आया है, मालिक सो रहा है, कुत्ता भी सो रहा है, तो कुत्ता क्या, गधा क्या करता है? चिल्लाने लगता है जोर जोर से, और गधे की आवाज सुनकर चोर भाग जाता है. मालिक उठता है और पिटाई किसकी करता है? गधे की. जेने काम तेने करे, बीजो करे तो डंडा. तुम्हारा जो काम है ना बस वही करना है. दूसरों के डिपार्टमेंट में नोक झोंक, ताक झाक नहीं करनी है. इसके डिपार्टमेंट में वो भाई था, वो कहाँ है? वो बहन थी, दिखती नहीं आजकल. ये बहन मधुबन में क्या कर रही है? ये तो सेंटर की बहन है, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए, यहां क्या कर रही है? लेट अस क्रिएट एन इंक्वायरी कमिटी. अपने गुप्तचरों को सक्रिय करो, क्या कर रहे हैं? और मीटिंग शाम को 5 बजे. राइट, 6:30 बजे. टोली व्यर्थ. बाबा ने कहा पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी समाया हुआ है, इसीलिए वजह से तो रामायण बना. रामायण क्या है? गीता क्या है? स्वचिंतन. गीता क्या है? सदर्शन चक्रधारी. गीता क्या है? नष्ट स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा. और रामायण क्या है? परदर्शन, परचिंतन, शूर्पनखा, मंथरा, कैकई, ये सब क्या है? रामायण की पूरी स्टोरी क्या है? कहां से आग लगी, क्या क्या कहानी सुनाई शूर्पनखा ने जाकर, वहीं से तो चालू हुआ सारा खेल. पूरी रामायण की कहानी किसकी कहानी है? पर चिंतन की, पर दर्शन की. धोबी, मंथरा, कैकई, शूर्पनखा, रावण और धोबी, ये 5ों की कहानी किसकी कहानी है? पर चिंतन और पर दर्शन की कहानी है. सीता जो इधर थी क्रॉस कर दी और कहां चली गई? शोक वाटी. अशोक वाटिका से शोक वाटिका, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज. याद में थी और फरियाद में चली गई. तो आज हमारी सभा में एक फरियाद हुसैन है और एक है याद हुसैन. दृश्य है मधुबन का शांत बगीचा. याद हुसैन जो है वो वृक्ष के नीचे शांति में बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद है, चेहरा आनंदित है. और फरियाद हुसैन जो है तेजी से आता है, चेहरे पर असंतोष और बेचैनी है. तो यह है आज का नाटक. स्टार्ट. तो फरियाद वाला क्या करता है? कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, शिकायत 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 हुसैन। और जो याद वाला है वो क्या करता है? याद में रहता है। तो बाबा ने कहा सीता दो प्रकार की है, एक सीता वो है जो याद में है, एक सीता वो है जो फरियाद कर रही है, एक सीता वो है जो स्टेज वन में, एक स्टेज वो है जो स्टेज टू में, एक सीता वो है जो अशोक वाटिका में, एक सीता वो है जो शोक वाटिका में है। तो मधुबन के शांत बगीचे में याद हुसैन और फरियाद हुसैन, ऐसे दो भाई हैं जो मिल रहे हैं। इस परचिंतन प्रदर्शन की 50 हानियों की लिस्ट है, वो केवल पढ़ना है, हम 10 सुनाएंगे यहां पर।
समझ में नहीं आता तुम हमेशा इतनी शांति में कैसे बैठे रहते हो। मैं तो लाइफ में सब कुछ सही करता हूँ, तो भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, समस्याएं ही समस्याएं हैं।
समस्याएं हैं या तुम्हारा दृष्टिकोण ही समस्या बन गया है?
याद हुसैन प्रैक्टिकल बनो, मेरा बॉस मुझे समझता नहीं है, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, घर में इतनी गलत फहमियाँ है, क्या करूँ? ऐसी स्थिति में तुम क्या करते?
अरे इतनी फरियाद, लेकिन बताओ जितना समय तुमने शिकायत करने में लगाया उतना याद में लगाया होता तो क्या स्थिति यही होती?
तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, तुम्हें क्या पता मेरी परिस्थितियों के बारे में।
अच्छा, क्या सच में परिस्थिति सबकी आती है? लेकिन फर्क दृष्टिकोण का है। मैं बाहरी संसार को देखने की बजाय स्वयं को देखता हूँ, अपनी शिकायतों को अनुभव करता हूँ और परमात्मा से शक्ति लेता हूँ।
रहने दो, ये सिर्फ बातें हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ पे इतनी आलोचना है, धन की समस्या है, परिवार में गलत फहमियाँ है, ऐसी जगह पे तुम होते तो तुम भी फरियाद ही करते।
नहीं बहन, क्योंकि शिकायत आत्मा को निर्बल बनाती है और याद आत्मा को शक्तिशाली बनाती है।
अच्छा,
फरियाद करने से परिस्थिति हावी हो जाती है, लेकिन याद करने से आत्मस्थिति पर विजय पा लेती है।
और जब सब गलत हो रहा होगा तब क्या करोगी?
मैं रुकूंगी, सोचूंगी और परिवर्तन करूंगी। यह मेरे साथ क्यों हुआ, यह पूछने के बजाय मुझे इससे क्या सीखना है, यह पूछूंगी।
याद हुसैन, कहने में अच्छा लगता है पर जब करने पे आती है ना तो बहुत मुश्किल लगता है।
मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि तुम दर्द पकड़ कर बैठी हो, प्रकाश को पकड़ नहीं रही हो।
सोचने की बात तो है।
चलो एक छोटा अभ्यास करते हैं। जब भी तुम्हें शिकायत करने का मन हो, रुको, गहरी सांस लो और शिकायत को थैंक यू में बदल दो। कोई मुझे समझता नहीं, इस जगह मैं स्वयं को समझता हूँ और परमात्मा मुझे समझता है। जीवन इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? इस जगह जीवन एक शिक्षक है और मैं सीख रहा हूँ, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा।
तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि कोई मुझे नहीं समझता तो मुझे ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ मैं स्वयं को समझता हूँ और परमात्मा भी मुझे समझते हैं, एंड आई शुड टेक लाइफ एज अ टीचर।
यस,
कि लाइफ ही एक शिक्षक है और मैं एक लर्नर हूँ। ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं।
क्योंकि याद ही वह समाधान है जो तुमने कभी अपनाया ही नहीं। शिकायतें शोक वाटिका बना देती हैं और याद अशोक वाटिका। अब बताओ कौन सी वाटिका में रहना चाहोगी?
मैं तो तुम्हारी वाटिका में रहना चाहूंगी।
तो बस अभी से शुरू करो, फरियाद कंप्लेंट्स को छोड़ दो, याद को अपनाओ। स्वर्ग बस एक स्मृति की दूरी पर है।
ठीक है, तो मैं भी अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, फरियाद से याद हुसैन कर लेता हूँ।
गुड,
थैंक यू ओम शांति।
थैंक यू ओम शांति।
तो इस रोल प्ले में हमने देखा कि हमारे पास सदा ही दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कंप्लेंट्स का, जो हमें दुख की ओर लेके जाता है, और दूसरा रास्ता होता है याद का, जो हमें चमकता हुआ हीरा बनाता है। ओम शांति।
जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन, यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। यदि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह चलना होगा। जगत कल्याण की खातिर तू आया है, तू स्वयं के लिए नहीं आया है। तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे, भले ही अंग तेरे भस्म हो जाए, आग लग जाए अंग भस्म हो रहे, तू जल जल के यहां किरने लुटा रे। विश्व कल्याणकारी बनना है ना, तो ये है कार्य विश्व कल्याण का। ब्रैकेट में लिखा है यही तेरे भाग्य में। तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? कि तेरा जीवन रहे सदा आग में, तेरा जीवन निरंतर कष्ट में रहेगा, निरंतर आग में रहेगा। भले ही अंग तेरे भस्म हो जाए, तू जल जल के यहां किरने लुटा रे। लिखा है यही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे सदा आग में, सूरज रे जलते रहना। यह संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए तपना अगन में। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। यह क्या है? ज्वाला का भवन तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है? ज्वाला का भवन तुम्हारा कमरा क्या है? ज्वाला का भवन मधुबन क्या है? ज्वाला का भवन हॉस्पिटल क्या है? ज्वाला का भवन सेवा केंद्र क्या है? ज्वाला का भवन गीता पाठशाला क्या है? ज्वाला का भवन रिट्रीट क्या है? सेंटर क्या है? ज्वाला भवन। ब्राह्मण जीवन क्या है? ज्वाला भवन। यज्ञ क्या है? ज्वाला भवन। ये ब्राह्मण परिवार क्या है? ज्वाला भवन। ये संकट तू खुशी के साथ सहलेना, सदा हंसते हुए तपना गन में। अगर तप सोना, सोने को कुंदन बनना है तो क्या होगा? तपना। अगर पिघल रहा है तो अर्थात सोना था ही नहीं, तुम प्लास्टिक थे शायद। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने भेजा है तुझे ज्वाला के भवन में। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा, जब तक ना हो घर घर में उजियारा, समझ लेना काम अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। तो चमकता हुआ हीरा बनना है, तो ये जो धूल और ये जो दाग है वो उस पे नहीं होने चाहिए। कौन से धूल, कौन सी धूल और कौन सा दाग? पर दर्शन और पर चिंतन। दूसरे ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको जो करना है करने दो, तुम वो करो जो तुम करने के लिए आए हो, जिसके लिए तुम्हें भेजा है ज्वाला के भवन में। तू जल जल के यहां किरने लुटा रे। ये ज्वाला भवन है। ये ना समझना ज्वाला भवन में आए हो तो मुझे आग ना लगे, सेक ना लगे। पर चिंतन पर दर्शन से ये 50 पॉइंट्स है जो आज एकांत में केवल पढ़ना है, करना कुछ नहीं है इसका, केवल पढ़ना है। 10 हम पढ़ के बताएंगे, बाकी ग्रुप में पोस्ट होंगे, वो आप पढ़ना। पहली हानि, भगवान की अवज्ञा का बोझ चढ़ता है। भगवान ने कहा है स्वचिंतन करो, खुद को देखो, दूसरों को तुमसे, दूसरों को देखना ही नहीं है। एक पर को छोड़कर बाकी सब पर काटो। ये जो है ना, ये 30, एक ये परोपकार छोड़कर बाकी भगवान की आज्ञा अवज्ञा का बोझ। अपने पर फोकस नहीं रहता, दूसरों के अवगुण व कमियां हमारे अंदर भी आने लगती है फिर धीरे धीरे। दूसरा चोरी करता है, दूसरा चोरी करता है, तो हमारे अंदर भी वो घुसेगा। दूसरा टाइम वेस्ट करते, दूसरे टाइम वेस्ट करते, तो हम भी टाइम वेस्ट करने लगेंगे। दूसरा अमृत वेला नहीं करता, मुरली नहीं सुनते, चिंतन नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो घुसने लगेगा। स्वयं का और दूसरे का समय नष्ट होता है, साक्षी दृष्टा नहीं रह सकते, प्रभाव लगाव झुकाव टकराव में आते रहेंगे, हमारी नकारात्मकता नकारात्मक कार्मिक अकाउंट बनता जाएगा। पर चिंतन से व पर दर्शन अकेले नहीं आते, उनके साथ कौन कौन आता है? ईर्ष्या, घृणा, रीस, रेस, भय आदि सब आते। नौवा, अब हमारी विशेषता सेवा में नहीं लगती और धीरे धीरे कम होने लगती है। अल्लाह, दसवां, पुरुषार्थ की गति कम हो जाती है। ऐसे ये 50 पॉइंट्स 2017 में यही मुरली पर, शायद यहीं पर ये क्लास हुई थी, उस समय ये तब के ये चिंतन किए हुए पॉइंट्स है, अभी काम आ रहे हैं। तो ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता, ज्ञान बीज है, पुरानी मुरली है ये। तो पहला काम आज की मुरली से ये जो पांच, इसमें से पांच निकालने हैं उसका विस्तार करना है, और दूसरा काम है ये जो पॉइंट्स है इसको एकांत में केवल पढ़ना है, क्रांति में। अपने आप को देखना है, हम करते क्या है दिन भर, स्वयं को देखते रहते हैं या दूसरों को? व्हाट वी स्पीक, कमेंट्स, जजमेंट्स, क्रिटिसिज्म अनायास निकलते रहता है, पर वो कितना हानि पहुंचाता है। वो व्यक्ति उस समय वहां है नहीं और हम उसके विषय में कुछ कुछ बोल रहे हैं, यहां तक कि उसके चरित्र के विषय में। आत्मा का बहुत तेजी से पतन होता है इससे, इसलिए बाबा ने कहा ये मूल है खुद की कमजोरी है, ये मूल आधार है, मूल बीज, ये दो शब्द मुरली में आए, मूल आधार, मूल बीज, ये कमजोरी है। और फिर कमजोरी को ढकने के लिए क्या करते हैं? कहानियां बुनते हैं, और उन कहानियों से परचिंतन परदर्शन तैयार होता है।
ओम शांति। सभी ने क्लास सुनी है, बाबा के महावाक्य सुने, तो सभी के पास एक चिट आएगी, तो उसमें जो भी आपने जो भी अच्छी पॉइंट लगी हो तो वो लिखेंगे क्लास से या मुरली से, कि जो ये करना चाहिए हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए, तो वो सभी लिखेंगे उसमें। तो इसके बाद सबके पास एक एक बलून आएगा, तो उसमें चिट लिख के मोड़ के बलून के अंदर डालना है। अच्छी बाबा के
मुरली में से क्लास
जो अच्छा लगा जी,
आज की मुरली से बोलो,
आज की मुरली से जो भी पॉइंट
13 तारीख
आज की मुरली से जो भी पॉइंट अच्छी लगी तो वो लिखेंगे। हो गया?
बलून मिले नहीं?
फिर उसका बलून को फुलाना है। हाँ, डालने के बाद फुलाना है, बलून के अंदर डालना है चिट के। सबका हो जाए फिर फूलने के बाद। बलू
गोपाल भाई जी आ गए,
सभी को बलून मिल गए।
कितना बड़ा फुलाना इसको, इतना तो इतना प्रेरणा दी ना बांधने का कैसा धागा?
नहीं ऐसे ही बांध, वो समीक्षा में
धागा होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है?
इसको हवा में छोड़ना है
और
फिर उसके बाद बताएंगे।
बाद में बताएंगे।
हो गया सभी के फूल गए।
फूला हुआ कौन बलून है? फूला हुआ गुब्बारा कौन है? हाथ खड़ा कौन है? गुब्बारे की बात नहीं कर रहे। हाँ हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गीत भी बजाना है।
सभी को इसको अब हवा में छोड़ना है।
ख्वाबों के रंगों की खुशियों की सपनों की अपनों की
गिरने नहीं देना है।
नहीं नीचे नहीं गिरने देना।
जादू के लम्हों की मेरे दिल के सभी कल्पनों की मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की नगिया है। यहाँ हर
जैसे ही गाना स्टॉप होगा सबके पास एक एक पकड़ लीजिए। नीचे नहीं नहीं खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, खोलना नहीं है। सब लोग पकड़ ले। अरे फोड़ना नहीं है अभी, वेट वेट। सब अपने पास रख लीजिए एक एक। अरविंद भाई जी घंटी बजाएंगे, उसके बाद सबको एक साथ ही फोड़ना है। नहीं तो ये निकालना है ना, चिटकी निकालनी है, यही तो मेन है। गेट लगा दीजिए तो आवाज नहीं
होगा। कैसे बांधना है उसको? इतना आवाज नहीं आएगा। आवाज आती है।
जो चिटकी आएगी वो अपने पास संभाल के रखिए। तो जो जिसको जो चिटकी मिली है तो आज उसी का अभ्यास करना है। और यही समझिए कि बाबा ने मुझे बोला है कि मुझे ये करना ही है। तो हम पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ेंगे, बेदाग हीरा भी बनेंगे और चमकदार हीरा भी बनेंगे।
Oh
शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, सृष्टि के रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी,
सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी,
सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी,
शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति।
शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी,
ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याण,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार,
Oh, oh, oh. अनुशासन के महानायक तुम
सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी
सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी
शिव शक्ति योगेश्वरी
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी
शिव शक्ति योगेश्वरी